नमस्ते, मैं आरफ हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रीड लाइट ऑन, क्रिस डिक्सन की इंटरनेट के इतिहास, संरचना और संभावित भविष्य पर केंद्रित गैर कथा पुस्तक है। डिक्सन का मुख्य तर्क है कि इंटरनेट का विकास 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहले रीड चरण में खुले प्रोटोकॉलों ने सूचना तक व्यापक पहुंच दी, फिर रीड राइट चरण में सोशल मीडिया और अन्य कॉरपोरेट मंचों ने आम लोगों को प्रकाशित करने की शक्ति दी, लेकिन बदले में डेटा वितरण और आर्थिक मूल्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुस्तक का तीसरा चरण रीड लाइट ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्कों के माध्यम से डिजिटल स्वामित्व को इंटरनेट की मूल क्षमता बनाने का प्रस्ताव रखता है। डिक्सन वेब 3 को केवल क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों या सट्टेबाजी से अलग करके देखने पर जोर देते हैं। उनका ध्यान इस प्रश्न पर है कि ऑनलाइन नेटवर्कों में निर्माता, डेवलपर और उपयोगकर्ता किस तरह हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक तकनीकी व्याख्या, इंटरनेट इतिहास और संस्थागत विश्लेषण को जोड़ती है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि खुले नेटवर्क, टोकन और विकेंद्रीकृत संगठन बड़े तकनीकी मंचों के विकल्प कैसे बन सकते हैं। साथ ही यह बहस भी खोलना है कि इस दृष्टि की व्यावहारिक सीमाएं क्या है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले इंटरनेट के 3 युग, रीड से राइट और फिर ऑन तक। डिक्सन का केंद्रीय ढांचा इंटरनेट को 3 अलग नेटवर्क मॉडलों की यात्रा के रूप में रखता है। रीड युग लगभग 1990 से 2005 तक खुले प्रोटोकॉलों और वेबसाइटों का दौर था। इसकी प्रमुख उपलब्धि सूचना का लोकतंत्रीकरण थी। कोई व्यक्ति वेबसाइट बना सकता था और कोई भी उसे पढ़ सकता था बिना किसी केंद्रीय कंपनी की अनुमति के, लेकिन प्रकाशन के लिए तकनीकी कौशल अपेक्षाकृत अधिक था। रीड राइट युग में उपयोगकर्ता अनुकूल मंचों ने इस बाधा को घटाया। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे मंचों ने पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियों के जरिए बड़े पैमाने पर भागीदारी संभव की। डिक्सन के अनुसार यही सुविधा एक नया केंद्रीकरण भी लाई। मंचों ने दर्शक, नियम, पहचान और कमाई के रास्तों को नियंत्रित किया, जबकि उपयोगकर्ताओं के योगदान से नेटवर्क का मूल्य बढ़ता गया। रीड राइट ऑन का विचार इस असंतुलन का प्रस्तावित उत्तर है। इसमें उपयोगकर्ता केवल सामग्री के पाठक या लेखक नहीं, नेटवर्क के हिस्सेदार भी हो सकते हैं। यह ढांचा किसी तकनीक को अनिवार्य रूप से श्रेष्ठ घोषित नहीं करता, बल्कि स्वामित्व और नियंत्रण के प्रश्न को इंटरनेट डिजाइन के केंद्र में रखता है। पुस्तक की उपयोगिता इसी में है कि वह सुविधा, खुलापन और आर्थिक भागीदारी के बीच मौजूद तनाव को स्पष्ट भाषा में अलग अलग करती है। दूसरा, कॉरपोरेट नेटवर्कों की सुविधा के बदले नियंत्रण और मूल्य निष्कर्षण। पुस्तक का महत्वपूर्ण विश्लेषण यह है कि आधुनिक इंटरनेट की समस्या केवल डेटा गोपनीयता नहीं है। डिक्सन कॉरपोरेट नेटवर्कों की आर्थिक संरचना पर ध्यान देते हैं। बड़े मंच खोज, सामाजिक संपर्क, विज्ञापन, भुगतान और सामग्री वितरण को सरल बनाते हैं। नेटवर्क प्रभाव के कारण जितने अधिक लोग किसी मंच पर आते हैं, उतना ही नया उपयोगकर्ता उसी मंच को चुनने के लिए प्रेरित होता है। इससे कुछ कंपनियों के पास वितरण की असाधारण शक्ति जमा हो सकती है। वे नियम बदल सकती है, सामग्री की पहुंच घटा या बढ़ा सकती है और लेन देन या विज्ञापन के माध्यम से मूल्य का बड़ा हिस्सा ले सकती है। डिक्सन इसे उच्च टेक रेट की समस्या से जोड़ते हैं, अर्थात नेटवर्क में भाग लेने की कीमत और उस मूल्य का हिस्सा जो मध्यस्थ रख लेता है। उनका तर्क यह नहीं कि हर केंद्रीय सेवा बेकार है। केंद्रीय सेवाएं अक्सर बेहतर अनुभव, तेज निर्णय और आसान सहायता देती हैं। प्रश्न यह है कि जब रचनाकारों, विक्रेताओं और समुदायों का श्रम मंच की संपत्ति बनता है, तब उनके पास नियमों को प्रभावित करने या लाभ में भाग लेने का कितना अधिकार है। इस दृष्टि से पुस्तक प्रतिस्पर्धा नीति, मंच शासन और डिजिटल श्रम के मुद्दों को एक ही संरचनात्मक प्रश्न से जोड़ती है। वह पूछती है कि क्या नेटवर्क की सुविधा को बनाए रखते हुए उसके स्वामित्व को अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। तीसरा, ब्लॉकचेन को क्रिप्टो सट्टे से अलग देखने का कंप्यूटर और कैसीनो भेद। डिक्सन पुस्तक में ब्लॉकचेन के बारे में बनी सार्वजनिक धारणा को चुनौती देते हैं। उनका प्रसिद्ध भेद कंप्यूटर और कैसीनो के बीच है। कैसीनो से उनका आशय क्रिप्टो बाजारों की कीमतों, तेज मुनाफे के दावों और सट्टात्मक व्यवहार से है। कंप्यूटर से आशय ब्लॉकचेन को एक साझा, प्रोग्राम योग्य और अनेक प्रतिभागियों द्वारा संचालित रिकॉर्ड प्रणाली के रूप में समझना है। इस व्यवस्था में नेटवर्क की स्थिति और उसके बदलावों को सत्यापित करने के लिए अनेक कंप्यूटर भाग लेते हैं, जिससे किसी एक संस्था के लिए रिकॉर्ड को मनमाने ढंग से नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। डिक्सन के लिए इसका महत्व उन स्थितियों में है जहां बहुत से अपरिचित लोग एक साझा डिजिटल व्यवस्था पर निर्भर हों। पारंपरिक मंच में उपयोगकर्ता को संचालक कंपनी पर भरोसा करना पड़ता है। ब्लॉकचेन आधारित मॉडल में कुछ नियम और संपत्ति अधिकार सॉफ्टवेयर तथा सार्वजनिक सत्यापन के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। फिर भी पुस्तक की अवधारणा को सावधानी से समझना जरूरी है। तकनीकी विकेंद्रीकरण अपने आप सुरक्षा, उपयोग में सरलता, निष्पक्षता या कानूनी अनुपालन की गारंटी नहीं देता। क्रिप्टो उद्योग में हुई विफलताओं और धोखाधड़ी ने यही जोखिम दिखाया है। डिक्सन का योगदान यह है कि वे तकनीकी ढांचे और उसके सट्टात्मक उपयोगों को अलग विश्लेषण की वस्तु बनाते हैं ताकि बहस केवल कीमतों तक सीमित न रह जाए। चौथा, टोकन के जरिए डिजिटल स्वामित्व और योगदान के नए प्रोत्साहन। रीड लाइट वन में टोकन को डिजिटल स्वामित्व को व्यक्त करने वाली मूल इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डिक्सन के अनुसार रीड युग की प्रमुख इकाई वेबसाइट थी और रीड राइट युग की प्रमुख इकाई पोस्ट। नए युग में टोकन किसी नेटवर्क में हिस्सेदारी, अधिकार या आर्थिक दावे को तकनीकी रूप से दर्ज कर सकता है। विचार यह है कि शुरुआती डेवलपर, रचनाकार, उपयोगकर्ता और अन्य योगदानकर्ता केवल सेवा के ग्राहक न रहे बल्कि नेटवर्क के बढ़ने पर उसके मूल्य में भाग ले सके। यह मॉडल उस परिस्थिति का विकल्प बनना चाहता है जिसमें मंच का अधिकतर आर्थिक लाभ निवेशकों और कंपनी तक सीमित रहता है। टोकन वितरण को डिक्सन विकास के आरंभिक चरण में योगदान आकर्षित करने वाले प्रोत्साहन की तरह देखते हैं, लेकिन यही सबसे कठिन डिजाइन प्रश्न पैदा होते हैं। किसे टोकन मिले, कितना मिले, किस योगदान को मापा जाए और बड़े धारकों की शक्ति को कैसे सीमित किया जाए। गलत प्रोत्साहन गुणवत्ता के बजाय शोर, हेरफेर या अल्पकालिक सट्टे को बढ़ा सकते हैं, इसलिए टोकन को स्वचालित रूप से लोकतांत्रिक मान लेना उचित नहीं है। पुस्तक की उपयोगी बात यह है कि वह स्वामित्व को केवल कानूनी या वित्तीय विषय नहीं बल्कि नेटवर्क भागीदारी के डिजाइन का विषय बनाती है। उसके प्रस्ताव की वास्तविक कसौटी समान अवसर, पारदर्शिता, जवाबदेही और दीर्घकालिक उपयोगिता के संतुलन में है। अंत में डीएओ, नेटवर्क शासन और विकेंद्रीकरण की व्यावहारिक कसौटी डिक्सन विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों यानी डीएओ को ऐसे ढांचे के रूप में देखते हैं जिनके जरिए नेटवर्क के सहभागी साझा संसाधनों और नियमों पर निर्णय ले सकते हैं। वे इन्हें मोटे तौर पर नगर सरकार जैसी भूमिका से जोड़ते हैं। किसी नेटवर्क को सॉफ्टवेयर सुधार, कोष आवंटन, विवाद समाधान और सामुदायिक प्राथमिकताओं के लिए निर्णय चाहिए। एक कंपनी में ये निर्णय प्रबंधन और निदेशक मंडल लेते हैं। डीएओ का आदर्श यह है कि निर्णय प्रक्रिया, मतदान और कोष का उपयोग समुदाय के अधिक खुले नियमों के तहत हो। यह विचार विशेष रूप से उन नेटवर्कों में आकर्षक है जहां उपयोगकर्ता ही सामग्री, तरलता, विकास या सामाजिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। फिर भी शासन केवल वोटिंग तकनीक का प्रश्न नहीं है। भागीदारी कम हो सकती है, बड़े टोकन धारक प्रभावशाली हो सकते हैं और जटिल निर्णयों को साधारण मतदान में बदलना कठिन हो सकता है। साथ ही किसी नुकसान, अवैध गतिविधि या तकनीकी त्रुटि के समय जवाबदेही किसकी होगी, यह कानूनी और व्यावहारिक प्रश्न बना रहता है। पुस्तक डीईओ को पारंपरिक संस्थाओं का पूर्ण विकल्प बताने के बजाय नए नेटवर्कों के लिए एक संगठनात्मक संभावना के रूप में रखती है। इसका व्यापक सबक यह है कि तकनीक के साथ शासन की संरचना भी डिजाइन करनी पड़ती है। स्वामित्व का दावा तभी सार्थक है जब प्रतिभागियों को सूचना, आवाज और जिम्मेदारी तीनों मिले। निष्कर्ष में, रीड राइट ओन उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो इंटरनेट को केवल ऐप्स और उपकरणों के संग्रह के बजाय आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना के रूप में समझना चाहते है। तकनीकी उद्यमी, उत्पाद प्रबंधक, रचनाकार, निवेशक, नीति निर्माता और डिजिटल मंचों पर काम करने वाले लोग इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। ब्लॉकचेन की तकनीकी पृष्ठभूमि न रखने वाला पाठक भी इसे प्रवेश बिंदु की तरह पढ़ सकता है, क्योंकि डिक्सन पहले इंटरनेट के परिचित इतिहास और मंचों की शक्ति से चर्चा शुरू करते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह किसी नए डिजिटल उत्पाद या समुदाय को देखते समय बेहतर प्रश्न देती है। स्वामित्व किसके पास है, नियम कौन बदल सकता है, मूल्य किसे मिलता है और उपयोगकर्ता के पास बाहर निकलने या भागीदारी का क्या अधिकार है, यही प्रश्न वेब 3 के बाहर भी उपयोगी है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर यह है कि यह ब्लॉकचेन को केवल मुद्रा, निवेश या तकनीकी चमत्कार के रूप में नहीं रखती, यह उसे नेटवर्क डिजाइन और संस्थागत समन्वय की समस्या के उत्तर के रूप में प्रस्तुत करती है। फिर भी पाठक को इसके आशावादी निष्कर्षों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखना चाहिए। केंद्रीकृत मंचों की कमियों से यह सिद्ध नहीं होता कि हर विकेंद्रीकृत विकल्प बेहतर होगा। टोकन सट्टा बढ़ा सकते हैं, डीओ में शक्ति केंद्रित हो सकती है और कानून, सुरक्षा तथा उपयोगकर्ता अनुभव की समस्याएं बनी रह सकती है। इस संतुलन के साथ पढ़ने पर पुस्तक इंटरनेट के भविष्य पर अधिक सटीक और संरचनात्मक सोच विकसित करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्रिस डिक्सन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।